मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का नमस्कार। दोस्तों, एकेडमी फॉर एक्सीलेंस के इस ऑडियो फॉर एक्सीलेंस में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है मित्रों, वह है जीवन में संतुलन, और उसका यह पार्ट टू है, भाग दो। आपको ध्यान है कि इससे पहले इसका पार्ट वन आप लोगों के सामने मैंने प्रस्तुत किया था, और जिसमें मैंने खासकर संतुलन को एक वैज्ञानिक तरीके से डिफाइन करने की कोशिश की थी। जहां तक है, मैं मान सकता हूं फ्रेंड्स कि पार्ट वन में जो भी बातें जिस तरीके से मैंने आपके सामने रखी हैं, वे थोड़ी सी वैज्ञानिक किस्म की थी, वैचारिक ढंग की थी, उनमें थोड़ी फिलॉसफी का जो पुट था वो ज्यादा था, थोड़ी सी आपको जटिलता भी महसूस हुई होगी। लेकिन जैसा कि आप लोगों से फीडबैक से मुझे मालूम हुआ है, इसके बावजूद आप लोगों को वह पार्ट अच्छा लगा, इसके लिए मैं आप सबकी प्रशंसा करूंगा और बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा। दोस्तों, ऐसा मैंने क्यों किया, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि ऐसा हो नहीं गया है। काफी कुछ मैंने जानबूझ कर भी किया है, हालांकि मुझे ये नहीं लग रहा था कि मैं इतने लंबे खासकर व्याख्या में चला जाऊंगा। फ्रेंड्स, मैं ये मानकर चलता हूं कि हमारे जीवन के बिल्कुल दो पक्ष होते हैं। एक होता है व्यावहारिक पक्ष, जिससे हम रोज रूबरू होते हैं, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे तरीके से जानते भी हैं और जिसका हम रोज अनुभव करते हैं। दूसरा होता है उसका सैद्धांतिक पक्ष। यह सैद्धांतिक पक्ष थोड़ा सा कठिन होता है, ये थोड़े से अलग तरीके के विचारों की मांग करता है, या कह लीजिए थोड़े से शिक्षा के स्तर की मांग करता है, थोड़ा सा तकलीफ देह होता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है फ्रेंड्स, वो ये कि यदि हम अपने व्यवहार के सैद्धांतिक पक्ष को समझ लेते हैं तो हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, फिर हम में निर्णय लेने की क्षमता आ जाती है। जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई भी व्यवहार है जिससे मैं परेशान हूं या दूसरे लोग परेशान हैं, मैं समझ नहीं पाता कि मैं अपने इस व्यवहार को कैसे ठीक करूं, और यहां तक कि मुझे यह भी समझ में नहीं आता कि भाई मेरा व्यवहार तो ठीक ठाक है, सामने वाले इससे परेशान क्यों हैं, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन यदि मैं व्यवहार का जो सैद्धांतिक पक्ष होता है, उसका जो मेथड है या उसके जो प्रिंसिपल्स हैं, अगर उनको जान लेता हूं तो फिर मुझे अपने व्यवहार को समझने में बहुत आसानी हो जाती है। फिर मैं निर्णय ले सकता हूं कि मुझे अपने व्यवहार में किस तरीके के बदलाव लाने चाहिए। मैं ये भी निर्णय ले सकता हूं, ले लूंगा कि मुझे किस तरीके से बदलाव लाना चाहिए, किस सीमा तक लाना चाहिए, कब लाना चाहिए। तो इस तरह से ढेर सारे डिसीजंस लेने के लायक मैं बन जाता हूं, और सच पूछिए तो तभी तो कुछ फायदा भी मिलेगा, अदरवाइज तो ठीक है, फिर बातचीत हो रही है, हम सुन रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई तब्दीली नहीं आ रही है फ्रेंड्स। इसीलिए चूंकि संतुलन का जो विषय है, जीवन में संतुलन का, ये मुझे बहुत महत्वपूर्ण विषय लगा, इसीलिए मैंने सोचा कि अगर मुझे अपनी बात थोड़ी डिटेल में भी जाकर कहनी पड़े तो कोई बात नहीं, मुझे कहनी चाहिए, कम से कम आपकी समझ में तो चीजें आए। समझ से भी बड़ी बात है कि आप में वो कैपेसिटी पैदा हो कि आप उनका उपयोग अपने जीवन में संतुलन स्थापित करने के लायक कर सके। फ्रेंड्स, इसीलिए मैं माफी चाहूंगा कि मैंने इसके पार्ट वन में अपनी बातों को थोड़ा सा सैद्धांतिक रूप से आपके सामने रखने की कोशिश की है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास है कि यदि उसमें आपको जटिलताएं लगी हों और यदि वो बहुत अच्छे तरीके से आपकी समझ में ना आया हो, तो प्लीज आप इस पार्ट टू को सुनने से पहले पार्ट वन को एक बार फिर से सुन लें। पार्ट वन में अगर मैं सरल शब्दों में कहना चाहूं तो वह यह है कि मैंने ये बताने की कोशिश की है कि हम अपने व्यवहार को, दूसरे के व्यवहार को, अपने विचारों को, दूसरों के विचारों को किस तरीके से समझें, विचार कैसे पैदा होते हैं, भावनाएं कैसे पैदा होती हैं, कैसे कोई एक पर्टिकुलर विचार किसी समय में प्रोमिनेंट हो जाता है, हावी हो जाता है, कैसे कोई भावना एक समय में एक सुनामी बनकर या ज्वार भाटा बनकर हमारे पूरे विचार को, हमारे पूरे व्यक्तित्व को अपनी लपेट में ले लेती है। और फिर हम जो कुछ भी करते हैं, करते तो हम ही हैं, लेकिन सच ये है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कर रहे हैं। तो ये जो सारे संकट हमारे जीवन में आते हैं, इन सब का विश्लेषण हम कर सकेंगे। मित्रों, मैंने यहां अभी एक संकट शब्द का प्रयोग किया। सच पूछे तो मुझे इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि ये हमारे जीवन के संकट नहीं है, ये हमारे जीवन के बदलाव हैं, ये हमारे जीवन के परिवर्तन हैं, या हमारे जीवन की झील में उठने वाली समय समय पर तरंगे हैं जो उठेंगी ही। जीवन कभी ठोस चट्टान की तरह हो ही नहीं सकता कि जो दिखाई दे रहा है तो फिर पता लगा कि सालों साल वही दिखाई दे रहा है। मित्रों, इसमें हर समय लहरें उठती रहती हैं, कभी छोटी, कभी बड़ी, कभी बहुत उससे भी बड़ी, और यही जीवन है। और सच पूछे तो यही जीवन की खूबसूरती है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जीवन में ये सब तूफान उठ रहे हैं, सुनामी आ रही हैं, हल्की तरंगे भी हैं, पतली पतली प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी उर्मियां भी हैं जो बड़ी प्यारी लगती हैं, अच्छी लगती हैं, उन लहरों पर चमकने वाला चांद, सितारे और सूरज भी हैं। जब सूरज उन लहरों पर चमकता है, तो ऐसा लगता है जैसे कि किसी ने उस पूरे के पूरे झील में सोना पिघलाकर डाल दिया हो। पानी ऐसा लगता है जैसे पिघला हुआ सोना हो, और जब चांद उस पर चमकता है तो ऐसा लगता है जैसे कि चांदी पिघलाकर डाल दी गई हो। कितना खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, जीवन का तो स्वरूप ऐसा ही होगा। तो क्या हम इसे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लें? नहीं। ये जो हमारा जीवन है, इसमें सच पूछिए तो ये एक नाव के समान है, और हम इस नाव को खेने वाले नाविक हैं, हम नाव को चला रहे हैं। अब हमारा जो रोल है, हमारी जो भूमिका है, वह इस बात की है कि हम इस समुद्र में जो हमारे अंदर है, जहां भावनाओं और विचारों की लहरें उठ रही हैं, तूफान उठ रहे हैं, सुनामियां बन रही हैं, ज्वार भाटे उठ रहे हैं, इनके बीच से अपने जीवन की नैया को कितने अच्छे तरीके से खे सकते हैं, यह संतुलन का कमाल है। लेकिन देखिए, जब आप किसी भी चलते हुए नाव को देखें, आप देखने की कोशिश कीजिए, तो नाव कभी भी स्थिर तरीके से नहीं चलती। नाव में हमेशा आपको एक जैसे कि झूला झूलता रहता है, झूला कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। तो नाव भी दोलायमान होगा, कभी लेफ्ट में झुकेगा, कभी राइट में झुकेगा, कभी तेजी से आगे बढ़ेगा, कभी उसकी रफ्तार कम हो जाएगी, कहीं वो बिल्कुल रुक भी जाएगा, कहीं झटके लगेंगे, ये सारी चीजें नाव के साथ होंगी। लेकिन यदि नाव वाला आपको दूसरे किनारे पर पहुंचा देता है तो आपका काम हो जाता है। और सच पूछे तो जिंदगी के बारे में हमें जो रवैया रखना चाहिए, खासकर संतुलन को लेकर के, वह इसी तरह का ही रवैया होना चाहिए। मित्रों, ये बात मैं जानबूझ करके इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारी लाइफ में दो तरह की स्थितियां होती हैं। एक होती है बिल्कुल ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन, यानी कि बिल्कुल आदर्शतम स्थिति। हमको लगता है कि यह बिल्कुल परफेक्शन, 100% परफेक्शन है, और मुझे इस परफेक्शन तक पहुंचना है। ओके, परफेक्शन तक पहुंचना है एक बहुत अच्छी बात है, यह केवल आपका टारगेट है, यह मंजिल है। और याद रखिए, मैं जो मान करके चलता हूं फ्रेंड्स, वो ये होता है कि मंजिलें कभी भी पाने के लिए नहीं होती, मंजिलें पहुंचने के लिए नहीं होती, मंजिलें होती हैं सिर्फ दिशा बोध कराने के लिए, डायरेक्शन देने के लिए। आपने एक मंजिल निर्धारित कर ली है, मुझे यहां पहुंचना है, आपको मालूम है कि वो मंजिल किस डायरेक्शन में है, किस दिशा में स्थित है, तो आप उस दिशा की ओर चलना शुरू कर देते हैं, बस केवल इतना ही। अब आपको लगेगा तो फिर चलने का मतलब क्या है कि अगर हम मंजिल तक ही नहीं पहुंच सके? मित्रों, जीवन की खूबसूरती यही है, और इसे मैं जीवन की खूबसूरती मानता हूं, उसकी सबसे बड़ी विशेषता मानता हूं। उसका कारण यह है कि जैसे ही मंजिल में पर आप पहुंचने को होते हैं, आप वो मंजिल आपसे खिसक कर आगे चली जाती है, आपकी यात्रा को बढ़ा देती है। एक पहली सिचुएशन, आपको लगता है कि मंजिल तो मिली ही नहीं। जैसे आप एक कलाकार से पूछिए, आप अमिताभ बच्चन जी से पूछिए, आज भी वो इतने शिद्दत के साथ, इतने डिसिप्लिन के साथ अभिनय में लगे हुए हैं। आप उनसे पूछिए कि क्या आपको आपके आपके अनुभव अभिनय की मंजिल मिल गई, वो आपको जवाब देंगे, बोले कि नहीं अभी तो मैं उसकी खोज में हूं, मुझे लगता है कि अब मिल जाएगी, मैं एक रोल करता हूं, एक फिल्म में रोल करता हूं और मुझे लगता है कि नहीं इसमें मैंने बहुत अच्छा रोल किया है और नो डाउट कि उसमें उनके रोल को बेस्ट अवार्ड भी मिल जाता है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिल जाता है, लेकिन फिर वो अपने को किसी दूसरी फिल्म में इन्वेंट करना शुरू कर देते हैं कि नहीं अभी और भी खोज करनी है, और भी कुछ बाकी है, और फिर से अभिनय की एक नई यात्रा शुरू हो जाती है। तो दोस्तों, मंजिल के साथ हमेशा दो चीजें होती हैं। पहली बात तो यह कि जैसे ही आप मंजिल पर पहुंचने के करीब होते हैं, वैसे ही वो मंजिल आगे खिसक जाती है, आप फिर उसे पाने के लिए आगे बढ़ते हैं और फिर वो आगे खिसक जाती है और पूरी जिंदगी की यात्रा ऐसे ही चलती रहती है। ये फर्स्ट सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन ये है कि यदि आप मंजिल पर पहुंच भी जाते हैं तो याद रखिए यात्रा खत्म नहीं होती है, फिर आप अपने लिए एक नई मंजिल निर्धारित कर लेते हैं, एक नई मंजिल बना लेते हैं, एक नया उद्देश्य बना लेते हैं, आपके लिए एक नया साध्य तैयार हो जाता है। क्या ऐसा नहीं है? आप सोच करके देखिए, आप सबने जीवन में कभी न कभी उस बात को पाया है जिसके पाने की चाहत आप सब में थी। मित्रों, हम सब उन लोगों में हैं, ज्यादातर लोग अपने जीवन को बहुत असफल मानते हैं, मैं बहुत असफल हूं, या जीवन में ये नहीं मिला, लोगों ने मेरे लिए ये नहीं किया, समाज ने ये नहीं किया, सब ऐसा लगता है जैसे कि पूरी की पूरी दुनिया हमारे विरोध में खड़ी है। लेकिन कभी आप ध्यान से सुनिए, सोचिए, तो आपको लगेगा कि आपने अपनी जिंदगी में बहुत सी चीजें हासिल की हैं और जो आपने हासिल की हैं उसमें दोनों तरह की चीजें हैं। पहली तो वे जो आप हासिल करना चाहते थे वो आपको मिल गया, और दूसरी वो कि आपको लगता ही नहीं था कि ये मुझे मिल भी जाएगा और वो भी मिल गया, या कह लीजिए कि जिसके बारे में सोचा ही नहीं था कि ये भी मुझे मिल सकता है वह भी मुझे मिल गया है। सोच के देखिए, जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो आपको अपने जीवन के प्रति जो शिकायत है वो कम होगी, क्योंकि हम सब जीवन से शिकायत करते हैं, लगातार शिकायत करते चले जाते हैं। तो मित्रों, आपने जो चाहा था वो आपको मिल गया, फिर इसके बाद की जिंदगी के बारे में सोचिए, अब क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, क्या चुपचाप बैठ गए हैं, क्या जब वो कुछ मिल गया जो आप चाहते थे उसके बाद फिर आपने कोई अपने लिए नया उद्देश्य नहीं रचा, नहीं बनाया, कुछ नए पाने के लिए फिर से यात्रा की शुरुआत आपने नहीं कर दी? और याद रखिए कि जो अब आपने नई शुरुआत की है, जब ये मिल जाएगी, जब इस मंजिल पर पहुंच जाएंगे, तो फिर एक नई यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और मित्रों, यही जिंदगी की खूबसूरती है, और सच पूछे तो यही जिंदगी की परिभाषा भी है। एक फिल्मी गीत की लाइन है, आपको याद होगी, पहले की फिल्म की है, 1970 के आसपास की है, जिंदगी चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम, जिंदगी चलने का ही नाम है, जैसे चलना बंद होता है जिंदगी खत्म हो जाती है। तो मित्रों, यहां जो मैं बात कह रहा था, एक बहुत ही व्यावहारिक दृष्टिकोण जो संतुलन के प्रति हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए, वो ये कि हम बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन में न रहें, आदर्शतम स्थिति में न रहें कि मैं हमेशा इस आदर्श संतुलन में रहूंगा, क्योंकि यदि आप उसकी तलाश में लग जाएंगे तो बीच के जो संतुलन आपके होंगे आप उनको रिजेक्ट करते चले जाएंगे कि नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, जबकि सही मायने में यही संतुलन है। फिर चलिए हम एक थोड़े से उदाहरण लेते हैं। मुझे अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं, जब हमारे गांव में और शहरों में भी जो राजस्थान के नट होते थे वो घूमते घूमते आते थे और अपना खेल दिखाते थे। दोनों तरफ बड़े बड़े बांस, लंबे लंबे बांस गाड़ दिए जाते थे और उसके बीच में एक डोरी खींच दी जाती थी, और उस डोरी पर एक छोटी सी लड़की, मुश्किल से 8-10 साल की होगी, वो उस पर चलती थी, उस डोरी पर चलती थी। और उसके हाथ में फिर एक डंडा सा पतला सा बांस सा रहता था, जिससे वो एक तरह से अपना संतुलन कायम करती थी। जिधर भी उसको लगता होगा कि वजन ज्यादा हो रहा है, शायद वो बांस के आधार पर अपने वजन को ठीक करती होगी। तो इसके बाद उस डोरी को पार कर जाती थी, और जैसे ही पार करती थी वैसे ही पूरा का पूरा वातावरण तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता था। वो संतुलन था। वो तार पर, उस डोरी पर साधा गया उस लड़की के द्वारा एक संतुलन की स्थिति थी उस समय की। वो आदर्शतम संतुलन हो सकती है, होती ही है, लेकिन आप देखेंगे कि मुझे ध्यान आ रहा है कि अगर माइन्यूटली मैं उसके बारे में जब सोचता हूं तो बीच बीच में उस लड़की के पैर डगमगाते थे, वो इधर उधर थोड़ा सा भटकती थी, लगता था कि कहीं गिर ना जाऊं, लेकिन फिर वो अपने आप को संभाल लेती थी। ये उसके संतुलन की स्थिति थी, लेकिन कितने मिनट के लिए? मुश्किल से एक दो मिनट के लिए, बस उससे अधिक नहीं। इसके बाद फिर से वो हम सब जैसे ही धरती पर आ गई है और अपना काम कर रही है। एथलेटिक्स को देखिए, जो एथलेटिशियंस होते हैं, जो खेल वगैरह में होते हैं, जब अपने कर्तव्य दिखाते हैं और कर्तव्य दिखाने के बाद, जैसे मान लीजिए कि उन्होंने उछाल भरी कर्तव्य दिखा रहे हैं और इसके बाद धप से जब जमीन पर आते हैं तो उनके कदमों को देखा जाता है कि जमीन पर उनके जो पैर हैं वो कितने ठोस तरीके से, बिना डगमगाए, बिना कंपन के, बिना हिले जमीन पर रखे गए हैं, और उससे निर्धारित किया जाता है कि यह कितना परफेक्ट है, यानी कि जमीन को टच करने के समय इसमें कितना संतुलन रहा है, उसका निर्धारण किया जाता है। लेकिन बस उस थोड़े से समय के लिए, इसके बाद फिर से वो जीवन की दूसरी गतिविधियों में शामिल हो जाता है। तो मित्रों, मैं जो यहां बात कहना चाह रहा हूं वो केवल यह कि जो संतुलन होता है, जो आदर्शतम संतुलन होता है, हम जीवन में पाते हैं, लेकिन वो थोड़े से समय के लिए होता है। और याद रखिए कि ये जो आदर्शतम संतुलन है ये भी सबका अलग अलग होता है। मेरा जो आदर्शतम संतुलन हो सकता है वो आपका नहीं हो सकता, और जो आपका आदर्शतम संतुलन हो सकता है वह मेरा नहीं हो सकता, वो सबका अलग अलग होता है। आइए थोड़ा सा एक उदाहरण के जरिए इसको भी समझ लेते हैं। गायकों के बारे में आप देखिए, जो गायक होते हैं, गायक बेसिकली क्या है? गायक वह है जो स र ग म प ध नि सा, ये जो सुर होते हैं, ये जो ध्वनियां हैं, अगर हम सामान्य भाषा में कहें तो इन ध्वनियों को साधता है, अपने गले के माध्यम से इन पर नियंत्रण स्थापित करता है, और इस तरीके से नियंत्रण स्थापित करता है कि इन ध्वनियों को मैं जिस समय जितने टाइम के लिए निकालना चाहूं उस तरीके से उतने दबाव के साथ बाहर निकाल सकूं। यही तो है पूरे के पूरे गायन के, का अगर विज्ञान हम मान करके चलें तो गायन के विज्ञान का सूत्र या उसकी कला। अब आप देखिए, आप भी गायक हैं, दूसरे और भी लोग गायक हैं, या चलिए फिल्म इंडस्ट्री के आप गायकों को ले लीजिए, क्लासिकल जो सिंगर्स हैं आप उनको ले लीजिए, कई गायक हैं और सब ने यही सूत्र साधा है, सरगम की जो ध्वनि है उसी को साधने की कोशिश की है, और सब साधने के बाद बड़े पॉपुलर, बड़े लोकप्रिय गायक भी हैं और सब गा रहे हैं, लोग तालियां बजा रहे हैं, मुक्त कंठ से सराहना भी कर रहे हैं, उनके गायन को सुनकर के उनका शरीर गनगना जा रहा है, गदगदा जा रहा है, लोग रोने लगते हैं, तालियां बजाने लगते हैं, लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं, यह उनके गायन में ताकत है। अब यहां दो बातें हैं, पहली बात कि जितने भी गायक हैं उन सब के गायन के संतुलन अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है, यही विविधता तो जीवन का सौंदर्य है। दोस्तों, मैं बार बार जीवन 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 का सौंदर्य, जीवन की खूबसूरती, जीवन की विशेषता जानबूझकर कह रहा हूं, ताकि जीवन को समझने के प्रति एक वैज्ञानिक और अलग तरीके का दृष्टिकोण आप सब में विकसित हो सके। क्योंकि जीवन वही नहीं है कि खाया पिया सो गए और जीवन चल गया, ये बहुत डेप्थ में है और बहुत मल्टी डायमेंशनल है और बहुत मजेदार है, इसलिए मैं बार बार बीच में ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं। सब गायक हैं लेकिन सब अलग अलग हैं, और मजेदार बात यह है कि अगर सब अलग अलग हैं तो इसका मतलब यह है कि सबके जो आदर्शतम संतुलन की जो स्थिति है वो भी अलग अलग है, तभी तो सब अलग अलग हैं।
अन्यथा अलग अलग नहीं होते, सबके आदर्शतम स्थितियां अलग अलग हैं। और मजेदार बात है कि चूंकि ये बहुत सफल गायक हैं, तो ये सबके सब गायक अपने आदर्शतम संतुलन की स्थिति को पा चुके हैं। ये बात अलग है कि वो लगातार और पाने की कोशिश में रहते हैं, तभी तो रियाज करते रहते हैं, जो मैंने अभी अमिताभ जी के बारे में आपसे बात की थी, इसीलिए तो रियाज करते हैं कि शायद कहीं कुछ और अच्छा हो जाए, कुछ और अच्छा सुर सध जाए, कुछ और अच्छा सुर लग जाए, गले में कुछ और लोच आ जाए, कुछ और ऐसा उतर जाए कि लोग सुने और उनका हृदय गदगद आ जाए, इसी कोशिश में लगे रहते हैं। लेकिन मित्रों एक बात और, ये जो गायक होते हैं, ये जब गाते हैं तो उनकी आवाज अलग है, लेकिन जब वो बोलते हैं तो उनकी आवाज अलग है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि वो जो आदर्शतम संतुलन की स्थिति थी वह कुछ देर के लिए सध गया, बात खत्म हो गई, वो हमेशा सधा हुआ नहीं रह सकता। दोस्तों मैं जानबूझकर के बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने अक्सर यह पाया है कि लोग आदर्शतम स्थिति को पाने के लिए फिर इतना भटकते रहते हैं, इतना भटकते रहते हैं कि जो वो पा चुके हैं उनको भी वो खो देते हैं, या अगर खोते भी नहीं है तो उनको बिल्कुल तरजीह नहीं देते, जबकि वह भी उनके जीवन का एक बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, बड़ा कीमती हिस्सा है, क्योंकि उसे भी उन्होंने हासिल किया है और उसके लिए भी उन्होंने साधना की है। दोस्तों यहां मुझे एक बात याद आ गई और याद आ गई और बड़ी खूबसूरत बात है, और वो बात है एक शब्द है सुर और दूसरा शब्द है असुर। सुर का मतलब आप जानते हैं, सुर ना सधे क्या गाऊं मैं, जो ध्वनियां हैं वो सुर हैं, गाने की जो ध्वनियां हैं वो सुर हैं, सामान्य अर्थ में बता रहा हूं। और असुर मतलब इस, ये तो बहुत ही बेसुरा गा रहा है, उस रूप में भी हम असुर को कहते हैं, जिसका गाने का गला नहीं है, जो एक तरह से एक लय में अपनी चीजों को नहीं रख सकता, वो बेसुरा है। लेकिन एक दूसरा शब्द भी है दोस्तों, वो खासकर इसको मैं अब जीवन से जोड़ करके ये बात आपके सामने रखना चाहूंगा। सुर का मतलब होता है देवता, कहते हैं ना सुर यानी कि देवता, और असुर का मतलब होता है दानव। देवता और दानव के अंतर को आप जानते हैं मित्रों। क्या इन दोनों शब्दों को हम जीवन के संतुलन के सिद्धांत पर अप्लाई कर सकते हैं? क्या सुर वे हैं जिन्होंने अपने जीवन के जितने भी अंदर के उनके भाव और विचार हैं उनको साध लिया है, और चूंकि उनको साध लिया है, जैसे सुर सध गया है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन के अंदर के इन भाव और विचारों को साध लिया है, इसलिए वे देवता हो गए हैं। और जो साध नहीं पाए हैं, जो बेसुरे बने रह गए हैं, क्या वे ही असुर हैं? मुझे लगता है कि एक व्याख्या ये भी हो सकती है। असुर का मतलब ये हुआ कि जिसके सुर सधे हुए नहीं है। भीड़, दोस्तों भीड़ है, भीड़ में बहुत सी आवाजें उठ रही हैं, हल्ला गुल्ला मच रहा है, आवाजें तो वहां भी हैं लेकिन उनका कोई अर्थ नहीं है, उन आवाजों का, उन ध्वनियों का कोई अर्थ नहीं है, बावजूद इसके कि बहुत सी आवाजें हैं। लेकिन अगर कहीं गायन का प्रोग्राम हो रहा है तो सिर्फ एक गा रहा है, अगर सामूहिक गायन है तो कुछ लोग मिलकर गा रहे हैं, जो आवाज है उतनी ऊंची नहीं है जितनी कि उस भीड़ की आवाज थी, इसके बावजूद इस आवाज में एक लय है, एक रिदम है, एक खूबसूरती है, इसका एक प्रभाव है। ये जो अंतर है दोस्तों, ये जीवन, एक संतुलित जीवन और असंतुलित जीवन के अंतर को दिखाता है। जो भीड़ की जो आवाज है, जो असुर के जो भाव हैं, वह जीवन है जो असंतुलित है, जिन्होंने अपने जीवन के भाव और विचारों को साधने के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कोशिश करने की तो बात अलग है, सोचा ही नहीं, जो मन में आया जब जो कुछ भी सूझा कर दिया। दूसरी तरफ वो गायन की ध्वनि है, वो प्रार्थना के स्वर हैं, वो आरती की धुन है, मधुरता है, जहां सारे के सारे सुर, सारी की सारी ध्वनियां एक व्याकरण के तहत, एक ग्रामर के तहत, एक मर्यादा के साथ गुथी हुई सामने चली आ रही है। यह सुर है, यह गायन है, यह संतुलित जीवन का पर्याय है। तो स्वाभाविक है कि यदि मेरे पास संतुलित जीवन है तो मेरी जीवन की गुणवत्ता बिल्कुल डिफरेंट होगी, और यदि मैंने अपने अंदर संतुलन स्थापित नहीं किया है तो मेरे जीवन की गुणवत्ता बिल्कुल अलग होगी। और ये जो अलगाव है ये उसी तरह का होगा जो हम सुर और असुर के अलगाव में देखते हैं। तो दोस्तों, इतनी व्याख्या करने के बाद यदि मैं अब आपसे एक बात आप लोगों के सामने रखूं जो बड़ी छोटी सी बात है और बड़ी सरल और सहज बात है, वो ये कि संतुलन का अर्थ है सही, तो क्या आप इससे सहमत होंगे? संतुलन का मतलब हुआ जो सही है। अब आप देखें कि जो सही है ये फिर एक बड़े व्यापक अर्थों में आपको लेना होगा। सही का मतलब समय सापेक्षता, जो चीज अभी सही हो सकती है वही चीज दूसरी जगह पर सही नहीं हो सकती। मान लीजिए कि यदि गायन का एक लय, एक धुन या एक सुर कुछ पर्टिकुलर भावों के लिए सही हो सकती है, हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं कि वही सुर और वही धुन दूसरे तरह के भावों के लिए भी उतने ही सही हो। जैसे मान लीजिए कि अगर बेटी की विदाई हो रही है तब उस समय का जो गायन होगा, आप याद करके देखिए, हम लोगों के समय में जब लड़की विदाई होती थी तो मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ वो गीत बजता ही बजता था कि खुशी खुशी कर दो विदा, तुम्हारी बेटी राज करेगी। और मैंने देखा कि जैसे ही ये गाना बजना शुरू होता था लोग फफक फफक कर रोना शुरू कर देते थे। मतलब इससे पहले सब शांत रहते थे, ठीक ठाक रहता था, लेकिन जैसे ही गाने की धुन शुरू हुई, इसमें मोहम्मद रफी ने सच पूछे तो अपनी आत्मा उड़ेल करके रख दी है। और कहा जाता है कि मोहम्मद रफी साहब ने अपनी बेटी की विदाई पर इसे मतलब गाया था और इसके बाद फिर इसको गाया है, तो उनको उस समय गायन के समय में अपनी बेटी की विदाई ही याद आई होगी, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी आत्मा इस गायन में उड़ेल दिया है। और यही कारण है कि आज भी वो गीत सुनकर लोग रो उठते हैं। तो वहां एक अलग धुन है, अलग सुर है, वो वहां सही है। लेकिन यदि कोई बहुत ही उछल कूद वाला और लाइफ के एंजॉय से भरा हुआ माहौल हो और उसके लिए अगर गीत लिखा जा रहा है तो उसके लिए फिर ये धुन सही नहीं होगी, वहां वो अनफिट बैठ जाएगी। इसीलिए मित्रों, मैंने अगर कहा कि संतुलन का अर्थ है सही, तो आपको इस सही के अर्थ को भी सही सही समझना होगा, तब आप जीवन को बहुत व्यापक रूप में देख पाएंगे। नहीं तो हमें क्या लगता है कि सही का मतलब है शुभ, जिससे कल्याण होता हो। नो डाउट कि सही का मतलब हमारे यहां जो सत्यम शिवम सुंदरम की बात कही गई है वो यही माना गया है कि सत्य वही होता है जो कल्याणकारी होता है, जिससे कल्याण सदता हो, वो बात तो सही है। लेकिन जो सही शब्द है, सही शब्द का मतलब है कि उस पर्टिकुलर टाइम पर, उस समय विशेष में, उस स्थान विशेष में वही किया जाना चाहिए था। हो सकता है कि उसका किया जाना तात्कालिक रूप में शुभ न लग रहा हो, कल्याणकारी न लग रहा हो, लेकिन उस समय वो सही था। मित्रों, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आप इसे समझ लेंगे आप देखेंगे कि आपके अंदर दूसरों को क्षमा करने की जबरदस्त भावना पैदा हो जाएगी, दूसरों को अपना बनाने की जबरदस्त ताकत पैदा हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि दूसरों को समझने के लिए आपके दिमाग में स्पेस बन जाएगा, क्योंकि तब आप सही का सही तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। हम तो अभी जो सही का मूल्यांकन करते हैं वो अपने हिसाब से करते हैं, हमें जो सही लग रहा है वो सही है, दैट्स ऑल। हिटलर नामा, हम सही हैं, दूसरे गलत, सही हो ही नहीं सकते, वो गलत ही बोल रहा है। और दूसरे से बात कीजिए तो वो कहता है कि नहीं मैं सही हूं। अब एक ही इश्यू पर दो लोग अलग अलग दृष्टिकोण वाले सही कैसे हो सकते हैं? लेकिन ये बात समझ में नहीं आती, और जब समझ में नहीं आती तो वहीं पर सच पूछिए तो कट्टरता पनपती है, वहीं पर सच पूछिए तो हमारे दिमाग में संकीर्णताएं पैदा होती हैं, और वहीं पर सच पूछिए तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को छोटी सोच वाला बना लेते हैं, छोटे मन वाला बना लेते हैं, छोटी बुद्धि वाला बना लेते हैं, और कुल मिलाकर के अपने जीवन को तंग कर लेते हैं। तंग करने का मतलब परेशान करने वाला नहीं है, अपने जीवन को कसा हुआ, चारों तरफ से कसा हुआ, बंधा हुआ कर लेते हैं। जीवन जो इतना विराट है, जीवन जो इतना विशाल है, जीवन जिसे एक बिल्कुल खुले हुए चद्दर की तरह या कह लीजिए पताका की तरह फड़फड़ 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 फहराना चाहिए, वो पता लगता है कि सैकड़ों गांठ लगी हुई एक चद्दर की तरह एक टंगी सी रह जाती है। जीवन का सारा फरहरापन खत्म हो जाता है, जीवन की सारी खुशियां कमजोर पड़ जाती हैं, कमजोर क्या पड़ जाती, खत्म ही हो जाती हैं। और जिस जीवन को लगातार उछालें भरना चाहिए, पता लगा कि वो मायूस सा लेटा हुआ है, जीवन का सारा स्वाद खत्म हो गया है, और जीवन के सारे रंग फीके पड़ गए हैं, और जीवन के सारे रस गायब हो गए हैं। ये तब होगा जब जीवन तंग हाल हो जाएगा, तंग दिल हो जाएगा, तंग बुद्धि का हो जाएगा। जैसे ही जीवन को आप छोटे से हिस्से में कसेंगे, उसकी विराटता नष्ट हो जाएगी, उसकी विराटता खत्म हो जाएगी। तो मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि ये जो सही शब्द है, इस सही को सही तरीके से समझना बहुत जरूरी होता है। नहीं तो हम अपने को ही लगातार सही मानते रहते हैं, और सबसे बड़ा दुर्भाग्य, सबसे बड़ा संकट तो तब आता है जब हम अपनी गलत चीजों को ही सही मानते रहते हैं, और जब हम अपनी गलत चीजों को ही सही मान रहे हैं तो उसी सही को जो गलत थी उसी सही को बार बार दोहरा रहे हैं। और फिर दुर्भाग्य ये है जो बिल्कुल विज्ञान के विपरीत है कि हम गलत को सही मान रहे हैं और गलत को सही मानकर उसी सही को बार बार दोहरा रहे हैं और चाहते यह हैं कि अब कुछ अच्छा हो जाए। अच्छा हो जाने के लिए सही तो करना पड़ेगा, और सही कर सकें इसके लिए आपको जानना पड़ेगा कि सही क्या होता है, तब आप उसको सही कहेंगे। तो मित्रों, मैं अब आज के अपने इस पार्ट टू वाले ऑडियो फॉर एक्सीलेंस को अब इन शब्दों के साथ विराम देना चाहूंगा कि जो संतुलन का अर्थ ही होता है सही। अब इस सही का जजमेंट कैसे किया जाए, इसको कैसे डिफाइन किया जाए, इसको कैसे अपने अंदर लाया जाए, इस पर हम लोग अब इसके नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, जो होगा जीवन में संतुलन पार्ट 3। तो मित्रों, अब इसी के साथ ही मैं आपसे इजाजत चाहूंगा, जीवन में संतुलन पार्ट 3 के माध्यम से आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अनुमति चाहता हूं, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।